संख्या 25 अध्याय 4 उस युग की साधना और तात्कालिक समाज एक टीका युग और उसकी प्रधान समस्या। ईसा की 15वीं शताब्दी के अंत में किसी समय सूरदास ने जन्म ग्रहण किया था और 16वीं शताब्दी के मध्य भाग तक ये जीवित रहे। इनका काल ईसा की 16वीं शताब्दी रखा जा सकता है। इतिहास की दृष्टि में यह काल भारतीय संस्कृति के पराजय का काल है। पृष्ठ संख्या 26। विदेशी शक्तियाँ भारतवर्ष के इस कोने से उस कोने तक अपना आतंक विस्तार कर चुकी थी। युद्ध विग्रह में, वाणिज्य व्यवसाय में, भीतरी और बाहरी राज्य व्यवस्थाओं में सर्वत्र विदेशियों और विधर्मियों का हाथ था। इस देश के रहने वालों ने अनिच्छा पूर्वक विवश होकर यह शासन व्यवस्था स्वीकार कर ली थी। बीच बीच में सिर उठाने की कोशिश अगर कहीं हुई तो तत्काल ही जर्प चूर्ण कर दिया गया। सचमुच यह युग इस दृष्टि से देखने से अत्यंत अंधकारमय दिखाई देता है। भारतवर्ष की असफलता की करुण कहानी से इस युग के इतिहास का अध्याय भरा पड़ा है। परंतु इन सारी विघ्न बाधाओं को के होते हुए भी भारतवर्ष अपने आत्म रूप में निस्तेज नहीं हुआ था। यह बात माननी ही होगी कि राष्ट्रीय साधना भारतवर्ष की साधना नहीं है। एक बार बड़े बड़े राजा और सम्राट हमारे देश में दिखाई पड़े थे, किंतु इनकी महिमा इन्हीं में स्वतंत्र है। देश के सर्वसाधारण ने उस महिमा की सृष्टि भी नहीं की, वहन या भोग भी नहीं किया। व्यक्ति विशेष की शक्ति में ही उसका उद्भव और विलय हुआ, किंतु भारतवर्ष की एक अपनी साधना है, वह है उसके अंतर की चीज। सब प्रकार के राष्ट्रीय विपर्यय के भीतर से उसकी धारा बहती ही है। सूरदास के युग में भी यह धारा सूख नहीं गई थी, बल्कि और भी स्पष्ट होकर दिखलाई पड़ी थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी भारतवर्ष की राजनीतिक हार का युग भले ही हो, वर्तमान भारत इन शताब्दियों का ही परिणाम है। इन 200 वर्षों को एक बार इतिहास से निकाल दीजिए, फिर देखिए हम कहाँ के रह जाते हैं। वर्तमान भारत जिन महापुरुषों की देह है, वे रामानंद, वल्लभ, चैतन्य, कबीर, सूरदास, दादू, मीराबाई, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, तुकाराम, सबके सब इन्हीं 2 शताब्दियों की उपज है। इन 2 शताब्दियों को छोड़ दिया जाए तो हिंदी साहित्य में कुछ रह ही नहीं जाता। यह एक अद्भुत विरोधाभास है, पर सच है। देखा जाए यह बात कैसे संभव हुई। हिंदू धर्म के शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी को शास्त्रों के भाष्य या टीका का युग कह सकते हैं। मुसलमानों के आगमन से पहले भी सैकड़ों जातियां इस देश में आकर हिंदू धर्म का कवच पहन चुकी थी। नई नई जातियों के आने से नई नई समस्याएं खड़ी होती गई और हिंदू शास्त्रकारों ने नई नई स्मृतियां और नए नए पुराण रचकर इन समस्याओं को हल करने की चेष्टा की थी। उस समय तक हिंदू जाति के अंदर एक क्षीण जीवनी शक्ति वर्तमान थी। इस जीवनी शक्ति के कारण ही वह नई व्यवस्थाएं बना सकी थी, परंतु मुसलमानों के आ जाने से वह शक्ति स्तंभित सी हो गई थी। अब तक जो जातियां आई थी उनकी अपनी कोई जबरदस्त संस्कृति न थी, पर मुसलमानों की संस्कृति केवल सशक्त और संयत ही नहीं थी। पृष्ठ संख्या 27। उसमें भारतीय संस्कृति के विरोधी उपादान भी थे। बड़ी विकट समस्या थी। हिंदू जाति में जहाँ तक शास्त्रों का संबंध था, मौलिकता बच नहीं रही थी, पर परंपरा की एकांत प्रेमी सभ्यता होने के कारण वह शास्त्रों को फेंक भी नहीं सकती थी। इस विकट युग में कुछ शास्त्रकारों ने पुरानी स्मृतियों और पुराने पुराणों के स्तूपीभूत संग्रह से काल धर्म की उपयोगिनी विधि व्यवस्थाओं की खोज शुरू की। स्मृतियों पर नई टीकाएं लिखी गयी, नए नए व्यवस्था शास्त्र रचे गए और नए नए पुराण ग्रंथ भी बनाए गए। मनु के टीकाकार मेघतिथि और कुल्लुक भट्ट मिताक्षर टीका लिखने वाले विज्ञानेश्वर चतुर्वर्ग चिंता मणिकार हिमांद्री बंगाल के रघुनंदन काशी के कमलाकर आदि बड़े बड़े आचार्यों ने इस काम में हाथ लगाया। केवल स्मृति और पुराण ही तक यह बात सीमित नहीं रही। वेदांत, न्याय, व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष, वेदक आदि सभी शास्त्रों में मौलिकता का कोई चिन्ह नहीं मिलता। केवल टीका ही इस युग का कर्तव्य कार्य था। वेदों का सर्वोत्तम भाष्य जिसे सायणाचार्य ने लिखा था, इसी युग की उपज है। सारांश यह है कि शास्त्रों की दृष्टि से इस युग को टीका युग कहा जा सकता है। रघुनंदन को लीजिए या हेमांद्री को, निर्णय सिंधु को देखिए या मिताक्षरा को, सर्वत्र एक विशाल प्रयत्न दृष्टिगोचर होगा। राशि राशि स्मृतियों और पुराणों के उदाहरण दे देकर व्याख्याकारों ने हिंदू संस्कृति के वास्तविक रूप को बचा रखने की कोशिश की। इस प्रयत्न को देखकर उस युग की विकट समस्या का अनुमान होता है। सभी विद्वानों वो मानो हिंदू शास्त्रों की सारी शक्ति समेट कर विदेशी शक्ति का सामना करने को तत्पर है। सवाल यह है कि विकट समस्या क्या थी और सूरदास के अध्ययन से उस विकट समस्या पर कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं। क्या सूरदास स्वयं एक ऐसी शक्ति थे जो भारतीय संस्कृति की रक्षा का प्रयत्न कर रहे थे। इन प्रश्नों का उत्तर जितना ही कठिन है उतना ही सरल भी है। सूरदास शायद ही कहीं ऐसी बात कह गए हो जो उस युग की तात्कालिक परिस्थिति पर प्रकाश डाले। कारण यह है कि वे किसी युग विशेष के आदमी नहीं थे, परंतु सामाजिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार जटिल और विषम हो उठी थी कि कहीं कहीं सूरदास के पदों में उनकी ओर एक अस्पष्ट इंगित मिलता है। इस बात को समझने के लिए उस युग की साधना का एक संक्षिप्त नापजोख आवश्यक है। इतिहास का विद्यार्थी हमारे प्रश्नों के उत्तर में छूटते ही कह उठेगा कि उस विकट समस्या को तो एक वाक्य में ही बताया जा सकता है। मुसलमान बादशाह मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ते जा रहे थे और हिंदू तीर्थ को बर्बाद कर रहे थे। नाना उचित अनुचित उपायों से भोली भाली हिंदू जनता को मुसलमान बनाया जा रहा था। आए दिन हिंदू भले घरों की बहु बेटियों का सतीत्व नष्ट किया जा रहा था। इससे बढ़कर और विकट समस्या क्या हो सकती है। पृष्ठ संख्या 28। सचमुच इतिहास मुसलमानों की इसी ज्यादती को बताकर चुप हो जाता है, परंतु ये बातें शास्त्रीय समस्या का रूप नहीं धारण कर सकती। इससे बढ़कर उपहासास्पद बात और क्या हो सकती है कि मुसलमान तो गदा के आघात से सोमनाथ की मूर्ति को चूर्ण विचूर्ण करते रहे और हिंदू इस आक्रमण से रक्षा पाने के लिए मिताक्षरा लिखा करे। नहीं, यह उत्तर हमारे प्रश्न का उचित उत्तर नहीं हुआ। हम यह स्वीकार करते हैं कि मुसलमानों ने कभी कभी अनुचित शारीरिक बल का प्रदर्शन किया था, पर उसके लिए हिंदुओं ने शारीरिक बल से ही भले ही वह अल्प या असंगत हो आत्मरक्षा की चेष्टा की थी। वस्तुतः शास्त्रीय समस्या का कारण कुछ और ही था। बौद्ध धर्म का इसके बहुत पहले लोप हो चुका था। लोप का यह अर्थ नहीं है कि वह एकदम कहीं उड़कर अन्यत्र चला गया था। असल में वह पुनरुज्जीवित हिंदू धर्म में ही घुल मिल गया था। हिंदू सभ्यता अब पुरानी वैदिक सभ्यता नहीं रह गई थी, उसमें नाना भांति के अवैदिक उपादान आ मिले थे। बौद्ध धर्म का दुखवाद, वैराग्य, मूर्ति पूजा इत्यादि बातें हिंदू धर्म की अपनी ही चीज हो गई थी। अध्यापक क्षिति मोहन सेन ने सिद्ध किया है कि बौद्ध धर्म की ये बातें पहले से ही आर्यतर जातियों में विद्यमान थी। आर्य सभ्यता का प्रधान केंद्र था यज्ञ भूमि और द्रविड़ सभ्यता का तीर्थ। उत्तर काल में यज्ञों का स्थान तीर्थों ने ले लिया था। मुसलमानों के आगमन के पहले हिंदू सभ्यता प्रधानता तीर्थों, व्रतों, अनुष्ठानों और विविध प्रतीकों की पूजा पर ही केंद्रित थी। धर्म आंतर वस्तु न होकर बाहरी दिखावे का रूप धारण करता जा रहा था। बौद्धों का प्रवर्तित वैराग्य इस युग में अति विकृत रूप में देखा गया। लाख लाख की संख्या में काज कर्महीन असल साधुओं का दल व्यर्थ वैराग्य की आंच से हिंदू संस्कृति को झुलसा रहा था। प्रतीक पूजन का सात्विक अंश लुप्त होकर विकृत रूप को स्थान दे चुका था। इस समय पूर्व और उत्तर भारत में सबसे प्रबल संप्रदाय नाथपंथी योगियों का था। जनता का सारा ध्यान इस अशास्त्रीय योगियों की ओर आकृष्ट था। ये लोग महायान बौद्ध धर्म के उत्तराधिकारी थे। इन योगियों के प्रवर्तित रूप में तथागत के स्थान पर शिव का अधिकार हो गया था। सही, पर मूलतः यह बौद्ध थे। गोरखनाथ, मीननाथ आदि बड़े बड़े साधकों ने इस साधना को खूब समृद्ध किया। कबीर, नानक, दादू आदि संतों की वाणियों पर इनका यथेष्ट प्रभाव है। इसी तरह धर्म और निरंजन मतवाद की छाप भी परवर्ती साधकों पर है। वे लोग निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इसी समय एक और धारा पश्चिम से आई। यह बाशरा शास्त्रीय मुसलमानों की साधना धारा नहीं थी, बल्कि बेसरा अशास्त्रीय सूफियों की साधना थी। शास्त्रीय मुसलमान हिंदू धर्म के मर्म स्थान पर आघात नहीं कर सकते थे। पृष्ठ संख्या 29। वे केवल उसके शरीर को नोच खसोड़कर दुख भर पहुंचा सकते थे, पर इन सूफियों ने भारत के हृदय पर प्रभाव जमाया। कारण यह था कि इनका मत भारतीय साधना पद्धति का अविरोधी था। पर अविरोधी होने से क्या होगा, उसका सामंजस्य आचार प्रधान टीका युग के धर्म से न हो सका। भारतवर्ष की वह धारा जो आचार प्रधान वर्णाश्रम धर्म के विधानों के नीचे गुप्त रूप से बह रही थी, एकाएक इस सहधर्मी को पाकर विशाल वेग से जाग पड़ी। निरंजन नाथ आदि मार्गों की साधना पहले से ही निर्गुण ब्रह्म की ओर प्रवृत्त थी। इन दो धाराओं के संयोग से एक अभिनव साधना ने जन्म लिया। कबीर दादू आदि इसी मार्ग के यात्री हैं। यह बात स्मरण रखने की है कि न तो सूफी मतवाद और न यह अभिनव निर्गुण उपासना पद्धति ही उस विपुल वैराग्य के भार को कम कर सकी जो बौद्ध संघ के अनुकरण पर प्रतिष्ठित था। देश में पहली बार वर्णाश्रम व्यवस्था को इस विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। अब तक वर्णाश्रम व्यवस्था का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। आचार भ्रष्ट व्यक्ति समाज से अलग कर दिए जाते थे और वे एक नई जाति की रचना कर लेते थे। इस प्रकार सैकड़ों जातियां उपजातियों की सृष्टि होती रहने पर भी वर्णाश्रम व्यवस्था एक तरह पर चलती ही जा रही थी। इसमें अगर कभी विद्रोह हुआ था तो यह वैराग्य प्रधान साधु पंथों के द्वारा, परंतु अब की बार समस्या बड़ी टेढ़ी हो चली। सामने ही एक विराट शक्तिशाली प्रतिद्वंदी समाज था। घर में ही वैराग्य प्रधान साधुओं का भारी विद्रोह था। ये दो बातें ही वर्णाश्रम व्यवस्था को हिला देने के लिए काफी थी, परंतु तीसरी शक्ति तो और भी विचित्र और अद्भुत थी। निम्न श्रेणी के साधक अपनी महिमाशालिनी प्रतिभा और साधना के बल पर ब्राह्मण से लेकर सूत्र तक के गुरु बन रहे थे, और तो भी न तो समाज से निकलकर और न वैराग्य की धुनी रमाकर। इस विकट परिस्थिति को संभालना शास्त्र के लिए असंभव हो उठा था। टीकाकारों ने बहुत प्रयत्न किया पर व्यर्थ। इसी समय दक्षिण से एक नई धारा आई। यह धारा थी भक्ति की। कबीर आदि संतों ने जिस साधना का उपदेश किया था वह भारतवर्ष की अपनी ही चीज थी, सरल और सहज थी, परंतु तात्कालिक जन समुदाय अपने पुराने संस्कारों के कारण इसे तत्काल ग्रहण नहीं कर सका। कबीरदास ने स्थान स्थान पर जनमत को काफी आघात भी पहुँचाया है, जो उस युग की संस्कार जन्य जड़ता को देख कर उन्हें करना पड़ा था। पर दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा साधारण जनता के लिए बहुत दूर की चीज नहीं जान पड़ी। इस साधना का केंद्र बिंदु था प्रेम। राम और कृष्ण का आश्रय लेकर इस भक्ति की साधना ने उस युग को एक नया प्रकाश दिया। विदेशी संस्कृति के आत्मरक्षा के लिए अब प्रधानतः दो शक्तियां काम करने लगी। पहली कबीर आदि की निर्गुण साधना और दूसरी सूरदास आदि की सगुण साधना। पहली शक्ति शास्त्रकारों के लिए स्वयं एक समस्या थी। संख्या 30। इस धारा ने सूफी संतों के मतवाद को भारतीय रूप में ही प्रकट नहीं किया, उन्हें भारतीय संस्कृति से प्रभावित भी किया। यह हिंदू प्रभावापन्न मुसलमान साधकों का दल अपने समाज के शास्त्रकारों के निकट ठीक उसी प्रकार उपस्थित हुआ जिस प्रकार कबीर आदि के समान साधक हिंदू शास्त्रकारों के निकट हुए थे। किसी किसी मुसलमान साधक को अपने को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने का प्रयत्न करना पड़ा था। भक्त साधकों की दूसरी धारा शास्त्र और परिस्थिति का सामंजस्य करती हुई आगे बढ़ी। इन्होंने शास्त्र के उन अंशों को जो भक्ति सिद्धांत के अविरोधी थे जो कात्यो मान लिया, परंतु अन्य अंशों की उपेक्षा की। हमारा यह अध्ययन केवल सूरदास से संबंध रखता है, अतः हम यहाँ न तो पहली धारा के साधकों की ही चर्चा करेंगे और न दूसरी धारा के अन्य भक्तों की। अपनी बात की जाँच के लिए हम सूरदास और उनके समसामयिकी भक्तों के ग्रंथों से ही यथासाध्य उदाहरण देने का प्रयत्न करेंगे। सूरदास आदि भक्त कवियों में कहीं विरोध की ध्वनि नहीं है। वे अगर किसी बात को अनुचित समझेंगे तो अत्यंत मृदु भाषा में उसकी उपेक्षा पर जोर देंगे, या उपेक्षा भी वे सीधे नहीं कहेंगे, कहेंगे कवि की भाषा में लक्षणा और व्यंजना का आवरण डालकर। इनकी तुलना उपनिषद के ऋषियों से की जा सकती है जो यज्ञ याग के विरोधी नहीं उपेक्षक थे। सूरदास का सूर सागर प्रेम का काव्य है। इस प्रेम की लीला का वर्णन करते करते प्रसंग वर्ष में कहीं कहीं योग तीर्थ आदि पर कुछ कह गए हैं। इस छोटे से कथन से उस युग की परिस्थिति पर कभी कभी एक हल्का सा प्रकाश पड़ जाता है। 2. सूरदास की दृष्टि में उस युग के साधक। सूरदास के युग में सबसे प्रबल मतवाद था नाथपंथी योगियों का। गोपियों के मुख से सूरदास ने इस मत के विषय में बहुत कुछ कहलाया है। सूर सागर पढ़कर इन योगियों के विषय में बहुत सी बातें जानी जा सकती है। ये आसन ध्यान आराधना आदि के द्वारा साधना करते थे। मुद्रा भस्म विषाण मृग चर्म आदि धारण करते थे। ये आसन बांधकर आंख मूंद कर ध्यान किया करते थे और गोरखनाथ का नाम लेकर अलख जगाया करते थे। इनका उपदेश भी सूर सागर में दिया हुआ है। ये कहा करते थे भगवान शून्य सहज में वास करते हैं। 1. आसन ध्यान वायु आराधन अली मन चित तुम ताए अति ही विचित्र सुबुद्धि सुलक्षण गुनी जोग मति गाए मुद्रा भस्म विषाण त्वचा मृग ब्रज जुवती नी नहीं भाए। सूर सागर 4130 दो आए हैं ब्रज के हित उधौ जुवती को ले जोग आसन ध्यान नैन मुदे सखी कैसे कढ़े वियोग सूर सागर 4208 पृष्ठ संख्या 31 इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में होता हुआ जीवात्मा ब्रह्म सायुज्य को पाता है। ये सर्व जगत को ब्रह्ममय देखने का उपदेश करते थे। ब्रह्म अलग है, निरंजन है। इनकी साधना में पद्मासन जमा कर आँख मूंद कर ध्यान देने पर जोर दिया जाता है। ऐसा करने पर इन लोगों के कथना अनुसार अंतर ज्योति का साक्षात्कार होता था। यही अंतर ज्योति अच्युत अविगत और अविनाशी है। महायान बौद्ध धर्म में धीरे धीरे सहज ज्ञान की प्रधानता स्थापित हो गई थी। कहते हैं यही सहज ज्ञान योग से मिलकर नाथ पंथ के रूप में आविर्भूत हुआ। इन मतों में सहज शून्य निरंजन आदि बातें ज्यों की त्यों रह गई। परिस्थिति के अनुसार इनके अर्थों में हेर फेर जरूर होता रहा, पर इनकी धारा नहीं टूटी। सहज ज्ञान की साधना प्रणाली जैसे चित्त स्थिर करना, प्राणायाम, बिंदु धारण प्रभृति बातें ज्यों की त्यों रह गई। कबीरदास आदि संतों ने इन शब्दों को ग्रहण किया था। सूरदास इन सारी योग क्रियाओं और कृष्ण साधनाओं को अनावश्यक समझते हैं। प्रेम के सामने ये कोई चीज नहीं, यद्यपि ये इनको विमार्ग की ओर ले जाने का साधन नहीं समझते, उल्टे इसे बहुत ऊंचा और साधारण जनों के लिए अगम्य समझते हैं। परंतु उनका यह मत मानना पड़ता है कि भक्ति रूपी सहज पंथ के रहते यह योग का मार्ग सब तरह से उच्च होते हुए भी व्यर्थ का भार है। इसके बाद निर्गुण उपासना की बातें हैं। निर्गुण उपासना से सूरदास का मतलब शायद कबीरदास आदि की साधना से है। सूरदास इसको भी सगुण उपासना के सामने फीका समझते हैं। इस निर्गुण उपासना के साधकों का कहना था कि त्रिगुणात्मक भेद त्याग करके पूर्ण ब्रह्म का ध्यान करो। भगवान का न तो नाम है न रूप, उनका कुल भी नहीं, वर्ण भी नहीं, न कोई माता पिता है, न कोई स्त्री है, वे त्रिगुणातीत है, यह संसार मिथ्या है। एक सूर सागर 4712 दो मधुकर हम अजान मति भोरी, यह मत जाई तहां उपदेश हो, नागरी नवल किशोरी, कंचन कौ मृग कौ ने देखियो, किन पाथ्यो गही डोरी, कही धौ मधुप बारी ते माखन, कौने भरी कमोरी, बिनुही भीत चित्र किन कीनहु, किन नव घाल्यौ झोरी, कहो कौन पै कढ़त कनु का चिन्ह हटी भूसी पछोरी, निर्गुण ज्ञान तुम्हारो ऊधौ हम अब लाभ मति थोरी, चाहती सूर्य श्याम मुख चंद ही अखियां त्रेषित चकोरी। सूर सागर 4171 तीन ऊधौ हम ही न जोग सिखे, जिही उपदेश मिले हरि हमको, सो व्रत नेम बते। सूर सागर 4310 पृष्ठ संख्या 32 ईश्वर को सुख भी नहीं होता और दुख भी नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है, वह घट घट व्यापक है, भगवान अविगत है, अविनाशी है, पूर्ण है। इस निर्गुण ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। इस मत से सगुण उपासना की सरलता और उसका उत्कर्ष भी सूर सागर में अनेक स्थानों पर कहा गया है। भगवान के सगुण रूप होते हुए भी निर्गुण उपासना का आश्रय सूरदास को पसंद नहीं, ये दो मतवाद ही उस समय जोरों पर थे। स्वयं सूरदास इनसे प्रभावित हुए थे। योग मार्ग में कृष्ण साधना पर अधिक जोर दिया जाता था और निर्गुण मार्ग में ज्ञान पर। और भी कितने ही पंथ उस समय वर्तमान थे, पर उन सभी पंथों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, कृष्ण साधना प्रधान और ज्ञान प्रधान। कृष्ण साधना और ज्ञान मार्ग की चर्चा करते समय सूरदास उन सभी मतों की ओर आलोचना कर जाते हैं जो उस समय प्रचलित थे। जहाँ तहाँ अन्य संप्रदायों के नाम भी सूर सागर में मिल जाते हैं, जैसे मुंडिया या मुंडित सन्यासी, ये भी ज्ञान प्रधान साधक थे। सूरदास इनकी साधना को भी प्रेम के समकक्ष नहीं रखना चाहते। जनसाधारण में उस समय व्रत पूजा उपवास तीर्थ आदि की महिमा खूब प्रतिष्ठित थी। सूरदास इन सारी बातों को व्यर्थ समझते थे। इस बात में वे निर्गुण ज्ञान मार्गियों से प्रभावित हुए जान पड़ते हैं। योग यज्ञ आदि अनुष्ठान भी उन्हें पसंद नहीं। एक गोपी सुनहु हरि संदेश, कहयो पूरन ब्रह्म ध्यावहु, त्रिगुण मिथ्या भेष, ज्ञान बिनु नर मुक्ति नहीं, यह विषय संसार, रूप रेख ना नाम, जल थल बरन आवरण सार, मातु पितु को नाही नारी, जगत मिथ्या लाई, सूर सुख दुख नाही जा कई, भजो ताको जाई, सूर्य सागर 4303, दो सूर्य सागर 4713, तीन ब्रैकेट में उद्धव ब्रैकेट बंद बाहर, प्रेम भक्ति रहित निरस जोग कहा गाओ, निर्गुण अविनाशी मत कहा आनी भाख्यो, सूर दास जीवन धन काल कहा राख्यो, सूर सागर 4215, चार उद्धव तुम हो निकट के पासी, यह निर्गुण ले तिन्ही सुनावहु जे मुंडिया बथे काशी, सूर सागर 4286, पाँच गणिका किए कौन व्रत संचम सुख हित नाम पढ़ावई, मनसा करी सुमी रयो गज बपुरे ग्राह प्रथम गति पावई, सूर सागर 122, काहे को अश्वमेध जग कीजे गया श्राद्ध काशी केदार, राम कृष्ण अभिधाम न पटतर जो तन गरे हेम हतमार, प्राग कल्प माथे करवत दे चंदा तरनी ग्रहण लछवार, सूर दास भगवंत भजन बिनु यत कई दूत कौन टारे मार। पृष्ठ संख्या 33, पर इस बात का मतलब यह नहीं कि सूरदास इस मात पंथ के विरोधी हैं, वे भक्ति को सर्वोपरि समझते हैं, अगर भक्ति है तो तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं, अगर भक्ति नहीं है तो तीर्थ व्रत से कुछ बड़ी चीज की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की दृष्टि में जाति पाति कुलशील आदि कोई चीज नहीं है, योगी और अयोगी उनकी दृष्टि में समान है, केवल प्रेम चाहिए, प्रेम से ही वे मिलते हैं, इस प्रेम के अभाव में संसार का प्राणी वैसे ही माया के चक्र में पड़कर 84 लाख योनियों में भ्रमा करता है, यही सूरदास का अपना मत है। तीन मध्ययुग के ईसाई मर्मी और सूरदास, डॉक्टर ग्रियर्सन ने एकाधिक बार सूरदास नंददास मीराबाई तुलसीदास आदि भक्त कवियों पर ईसाई प्रभाव की चर्चा की है, उन्होंने इन्हें मध्ययुग के ईसाई मर्मियों बर्नर्ड ऑफ क्लेयर वाक थॉमस ए कैंपीस एकार्ट और सेंट थेरेसा आदि के समान बतलाया है, अतएव सूरदास के विद्यार्थी को एक बार मध्ययुग के ईसाई मर्मी संतों की खोज करना आवश्यक हो गया है। हम यहाँ इन दो दो श्रेणी के मर्मी भक्तों के दृष्टिकोणों को जिन्हें एक ही श्रेणी का मान लिया गया है स्पष्ट करना चाहते हैं। ईसवी सन की 12वीं शताब्दी के बाद फ्रांस के ईसाई मर्मी संतों की साधना में विश्वात्म बोध का प्राबल्य दिखलाई पड़ा। उस समय चर्च को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि मर्मियों के विश्वास फेथ और गंभीर प्रेम ब्रैकेट में वार्म लव की भावना को कैसे उत्तेजित किया जाए, क्योंकि भक्ति के लिए त्रेत भावना ईश्वर ईश्वर का पुत्र और जीव नितांत आवश्यक थी। इसी समय सेंट बर्नर्ड ह्यूगो और रिचार्ज जैसे महिमाशाली संतों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने शास्त्र परंपरा के साथ मर्म भाव का सामंजस्य किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आत्मज्ञान ही परमात्म बोध का साधन है और आत्म पवित्रीकरण ब्रैकेट में सेल्फ प्यूरिफिकेशन तत्व ज्ञान से कहीं ऊंचा है। 13वीं शताब्दी में यूरोपियन चर्च में प्रधानतः दो धाराएं हो गई थी। एक श्रेणी के संतों की घोषणा थी कि आत्मा किसी नियम की पाबंद नहीं है। इन लोगों ने खुल्ला खुल्ला सृष्टा और सृष्ट के भेद को मिटा देना चाहा। इसी नाजुक परिस्थिति में प्रभाव संपन्न मर्मी संत एकहर्ट का आविर्भाव हुआ। एक राम भक्त वत्सल निज पानव जाति गोत कुल नाम गणत नहीं रंक होए के रानव, सूर सागर 12। दो प्रेम प्रेम सो होई प्रेम सो पारही जे प्रेम बाधियो संसार प्रेम पर मारत पे, एक ही निश्चय प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल साचो निश्चय प्रेम को जीही ते मिले गोपाल। पृष्ठ संख्या 34, इन्होंने बड़ी जोरदार भाषा में बाइबल के डिवाइन स्पार्क एट द एपेक्स ऑफ द सोल की व्याख्या करके परमात्मा को इतनी निकट बताया है कि आत्मा सदा सर्वदा ईश्वर के साथ है। इन तथा अन्य ईसाई संतों की साधना को थोड़े में इस प्रकार कहा जा सकता है। एक आत्मसमर्पण ब्रैकेट में सेल्फ सरेंडर ब्रैकेट बंद, दो अपने में प्रभु के जीवन की अनुभूति ब्रैकेट में द फीलिंग ऑफ लॉर्ड्स लाइफ विद इन अस ब्रैकेट बंद, तीन तीन दिशाएं पवित्रीकरण उज्ज्वलीकरण और योग का या एकात्म भाव, चार प्रतीक भावना, पाँच अंतर्दृष्टि और पाप बोध की कोमलता। पहली बात है कि कन्वर्सन अर्थात चैतन्य का अकस्मात उदय और धर्म जीवन के लिए व्याकुलता। इसके बाद आता है पर्गेटिव स्टेज अर्थात संसार से वैराग्य, पाप बोध, दीनता और आत्म त्याग। एक, तुलना कीजिए। जन्म सिरानो ऐसे ऐसे कई घर घर भरबत जदुपति, बिन कई सोवत कई वैसे, कई कहू खान पान रमनादिक, कई कहू बाद अनेसे, कई कहू रंक कहू ईश्वरता नट बाजीगर जैसे, चेत्यो नाही गयो टरी अवसर मीन बिना जल जैसे, यह गति भई सूर्य की ऐसी श्याम मिलई धौ कैसे, अब हौ नाच्यो बहुत गोपाल काम क्रोध को पहिरी चोलना कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत निंदा शब्द रसाल, कोटिक कला काच दिखराई जल थल सुधी नाही काल, सूरदास की सबै अविद्या दूरी करहु नंदलाल। दो, वैराग्य। सबनी स्नेहो छाड़ी दियो हा जदुनाथ जरा तन ग्रास्यो प्रतिभव उतरी गयो, सोई धन धाम नाम सोई कुल यह बपू जी ही बढ़ियो, अब सबही को वदन स्वान लव चितवन दूरी भयो, तारा सुत हित चित सज्जन सब काहु ना सोची लयो, संस्कृति दोष विचारी सूर धनी जय हरी शरण गयो। पाप बोध। प्रभु हौं सब पतितन को टीकौ और पतित सब ध्वंस चारी के हौं तो जन्मत ही कौ, बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही कौ, मोहि छाड़ी तुम और उधारी मीटे सूल किम जी कौ, कौ न समरथ सेव करन कौ, हे जी कहत हौं ही कौ, मरियत लाज सूर पतितन में कहत सब में निकौ। पृष्ठ संख्या 35। इन दो दशाओं को पार करने के बाद भक्त इल्यूमिनेटिव स्टेज पर आ जाता है, जबकि संसार की प्रत्येक वस्तु उसे भगवान की प्राप्ति के लिए उद्वेलित कर देती है। इस समय तक भक्त साधक विजन या अंतर्दृष्टि का अधिकारी होता है। सबसे अंतिम अवस्था है यूनिटिव स्टेज, जहां जीवात्मा की परमात्मा के साथ अविच्छेद एकता स्थापित होती है। सूरदास के पदों के साथ ऊपरी लिखे सिद्धांतों को मिलाकर देखने से सबसे पहली बात जो मन में आती है वह यह है कि हिंदी के भक्त कवियों पर ईसाई मर्म भाव की छाप पड़ी है। हिंदी के भक्त कवियों पर इसलिए कहते हैं कि सूरदास में तो यह भावना फिर भी कम है, मगर तुलसीदास मीराबाई आदि भक्तों में इसी भावना की प्रधानता है। इसलिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने तुलसीदास को अपनी भावनाओं में सबसे बड़ा ईसाई बताया है, परंतु ग्रियर्सन साहब का कहना है कि क्या सचमुच ठीक है, क्या सचमुच ही भक्त कवियों पर ईसाई मर्म का भाव गहरा प्रभाव पड़ा है। ऊपर से देखने से तो यही जान पड़ता है, लेकिन इस प्रश्न को इतनी दूर से देखना अनुचित होगा। वह केवल हिंदी के भक्त कवियों के प्रति अन्याय करना न होगा। दीनता। कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, नाहिन मेरे अनंत कहूं अब पद अम्बुज बिन ठाऊं, हौं असूची अकृति अपराधी सन्मुख होत लजाऊं, तुम कृपालु करुणा निधि केशव अधम उदाहरण न ऊं, काय के द्वार जाई हौं ठाणो देखत काही सुहाऊं, असरन सरन विरद व्यापक हौं कामी कुटिल सुभाऊ, कलुती परम मलिन दुष्ट हौं सत्यो तौ न बिकाऊं, सूर पतित पावन पद अम्बुज पारस क्यों परसाऊं। आत्म त्याग। हमें नंद नंदन मोल लिए, यम की फांसी काटी मुकुराए, अभय आजाद किए, मूढ़ मुढ़ाए कंठ बंद माला, मुद्रा चक्र दिए माथे तिलक स्त्रवन तुलसी तल, मेटे अंग बिए सबको कहत गुलाम श्याम को सुनत सिरात हिए। एक, देखियत चहु दिसी ते घन घोरे, मानो मत मदन के हथियनी बल करी बंधन तोरे, श्याम सुभग तनु चुवत गंड मंद बरसत थोरे थोरे, रुकत न पौन महावत हूँ पई मूरत न अंकुश मोरे, बिनु बेला बल निकसी नयन जल कुंच कंचु की बंद बोरे, मनो निकसी बग पादी दात उर अवधि सरोवर फोरे, तब ते ही समय आनी ए रावत ब्रजपति सो कर जोरे, अब सुनी सूर्य कान के हरी बिन गरत गात जैसे ओरे। पृष्ठ संख्या 6। मध्ययुग के ईसाई मर्मियों के प्रति भी अन्याय करना होगा। हम इस विषय की गहराई तक बैठने की कोशिश करेंगे। यद्यपि ईसाई धर्म भक्ति प्रधान धर्म है, तथापि मूल हिब्रू संस्कारों का वह परित्याग नहीं कर सका है। सेमेटिक विश्वास के अनुसार खुदा बहिष्त या स्वर्ग नामक एक कल्पित देवलोक में रहते हैं। उनके हाथों से खिसक कर जो यंत्र गिर पड़ा था वह पापमय हो गया था। वही यंत्र है संसार। इस पाप भूमि पर मनुष्य वास करता है, वह स्वयं पापमय है। प्रभु ईसा मसीह ने अवतार धारण कर इस स्वर्ग का तथा पाप भूमि के अंतर को मिटाने का प्रयत्न किया था। इस व्यवधान में ही वे मध्यस्थ हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग से उतरना पड़ा था, इसीलिए मर्त्य लोक में क्रूस से विद्ध होना पड़ा था। वही क्रूस के वे भक्तों के लिए रख गए थे, इसीलिए स्वर्ग का अधिकारी वह है जो इस क्रूस या दुख को वरण कर सके। ईश्वर के लिए आत्म त्याग करना आनंद के लिए नहीं दुख के लिए है। वह आत्म त्याग नहीं आत्म बलिदान है, इसीलिए ईश्वर के सानिध्य के लिए अपने में निरंतर पाप बोध निरंतर दुख बोध का जागृत कर रखना नितांत आवश्यक है। जिससे पाप बोध की भावना जागृत न हो वह साधना साधना ही नहीं है। जब तक मनुष्य पापात्मा होकर दुख वरण नहीं करेगा तब तक वह मुक्ति कैसी। साधना के एक सिरे पर है यह दुख पाप अपूर्णता और दूसरे सिरे पर है उपनिषदों का आनंद अमृत तथा पूर्णता। आनंदा देव भूतानि जायन्ते आनंद रूपम मृते यद भी भाति। पहला है मध्य युग के ईसाई मर्म भाव का उत्स और दूसरा वैष्णव भक्ति कवि का उद्गम स्थान। दोनों के मूल में आकाश पताल का अंतर है। एक का रास्ता है दुख दूसरे का लीला। एक के प्रेम का कारण है पाप बोध दूसरे का आनंद केरी। एक का लक्ष्य है स्वर्ग और मर्त्य के व्यवधान को भर देना और दूसरे का ब्रह्मांड में व्याप्त अव्यवहित पूर्ण एक रस ब्रह्म को उसकी लीला की संकीर्णता में उपलब्ध करना। दोनों एकदम अलग चीज है। कहा जा सकता है कि क्या हुआ अगर दोनों के दो मूल उत्स हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि परिणत अवस्था में दोनों एक रूप हो गए हैं। वही पाप बोध दैन्य आत्मदान दोनों ही स्थान पर दिखलाई देते हैं। मगर यह बात नहीं है, हम आगे इसी बात पर विचार करेंगे। ईसाई भक्तिवाद का दैन्य या पाप बोध नहीं की ओर का है। मनुष्य स्वभावतः ही पापात्मा है, परंतु सूरदास आदि स्वभावतः अपने को पापात्मा नहीं समझते। यही कारण है कि सूरदास या तुलसीदास जब अपने को पतित कहते हैं तो उससे दास्य की गंध निकलती है, जो चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में त्रिणादि अर्थात त्रिणादपि सुनिचेन होकर रहने की भावना का फल है। सूरदास जब कहते हैं कि ऐसो कब करिहौं गोपाल मनसानाथ मनोरथ दाता हौं प्रभु दीन दयाल। पृष्ठ संख्या 37। चरणनी चित्त निरंतर अनुरत रसना चरित रसाल लोचन सजल प्रेम पुलकित तन करी कंजनी दलमाल। ऐसो रहत लिखत छन छन जब अपने भायो भाल सूर सुजस रागी न डरत मन सुनी यातना कराल। तो पाप की कराल यातना से उद्धार पाने के लिए नहीं, अगर उनका मन अनुरागी हो जाएगा तो उन्हें यमराज के लेखों और दंडों की बिल्कुल परवाह नहीं। पर ईसाई भक्त ईश्वर की ओर इसलिए झुका है कि वह पापमय है और ख्रिस्त का क्रूस उसे पाप से मुक्त कर देगा। दूसरा अंतर जो इन दोनों भावनाओं में है वह यह है कि सूरदास आदि भक्त कवियों का पाप बाह्य आगंतुक वस्तु है, परंतु ईसाई भक्तों का पाप अंतर और स्वाभाविक वस्तु है। तीसरा अंतर यह है कि सूरदास या तुलसीदास की पाप भावना व्यक्तिक और है और ईसाई भक्तिवाद इस व्यक्तिकता के एकदम विरुद्ध है। ईसाई मर्म भावना के साधकों में से कुछ ऐसे अवश्य हैं जिनके साथ इन भक्त कवियों की तुलना की जा सके। ईसाई धर्म के ईश्वर के दो रूपों ससीम और असीम को लेकर इन्होंने ठीक वैसे ही सृष्टि की है जैसे वैष्णव कवियों ने। ईश्वर इनके अनुसार शक्ति में अनंत है किंतु प्रेम में शांत। इस प्रकार के भक्तों में जकूब बोहम आदि का नाम लिया जा सकता है। आगे चलकर यह स्पष्ट होगा कि ब्रजभाषा के कवि नितांत प्रत्यक्ष ठोस रूप से उपासक है, मगर ब्रजभाषा की कविता भगवान के असीम अरूप की कल्पना को पूर्व से ही स्वीकार कर अग्रसर होती है। एक बार वह स्वीकार कर लेती है कि श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद और राधिका उनकी अहनादि चिन्मयी शक्ति है। आश्रित आसक्त सापेक्ष इसी सापेक्ष और निरपेक्ष के द्वंद को ब्रज का कवि अपनी कला से अभिव्यक्त करने जा रहा है। इतना स्वीकार कर लेने के बाद वह लेखनी उठाता है और फिर भूल जाता है कि उसने किस पूर्व स्वीकृत रूपक की नींव पर अपना भक्ति और प्रेम का प्रसाद खड़ा किया था। ईसाई मर्मी कभी इस बात को नहीं भूलता, इसलिए ईसाई साधक भक्त के सिंहासन पर आकर रुक जाता है और वैष्णव भक्त और भी ऊपर उठकर कवि के आसन पर बैठ जाता है। वहाँ वह समर्थ और सुंदर के भेदभाव एकदम भूल जाता है। चार, उस युग का समाज और सूरदास की साधना। सूर सागर के पढ़ने से उस युग के समाज का एक चित्र, जो सर्वांग पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता पर पर्याप्त जरूर है, आंखों के सामने खिंच आता है। देखा जाए सूरदास की साधना से उसका क्या संबंध था। पृष्ठ संख्या 38। क्या कहना उचित होगा कि हमारा मतलब यहाँ साधना के आलंबन या तद द्वारा प्रभावित समाज से ही है। वैसे सूरदास के विद्यार्थी को यह पता लगाना भी बहुत मुश्किल नहीं है कि उस जमाने के परचुनी की दुकान पर क्या क्या चीजें सुलभ थी, या उस युग की स्त्रियां किस तरह बाल संवारा करती थी, कौन कौन से गहने पहनती थी। हम यह मानते हैं कि इन चीजों का भी ऐतिहासिक मूल्य है, परंतु हमारे अध्ययन का साधना से अधिक संबंध है। अवसर मिलने पर इन विषयों की चर्चा भी की जाएगी, पर यहाँ नहीं। यह ध्यान देने की बात है कि दक्षिण से जो भक्ति की धारा उत्तर भारत में आई थी, वह सर्वत्र एक ही समान नहीं बनी रही। बंगाल में उसने एक रूप धारण किया, गुजरात में दूसरा और युक्त प्रांत में तीसरा। इसका कारण यह है कि मूल धारा जिस प्रदेश में पहुंची, वहां की सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विशेष रूप में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार सूरदास में वह धारा एक रूप में दृष्ट हुई, तुकाराम में दूसरे में। इसी समय पश्चिम के सूफी मत की एक साधना पद्धति भी इसी देश में आई थी और वह इस देश के कबीर आदि में एक स्वतंत्र रूप धारण कर गई। कबीर और सूरदास आदि का साधना प्रदेश करीब करीब एक ही था। इन दोनों संतों ने दो मार्ग लिए, परंतु दोनों का ही आधार एक ही प्रकार की सामाजिक परिस्थिति थी। इसीलिए इन दोनों संतों में जो बातें एक सी ही है, उनसे उस युग के समाज का चित्र स्पष्ट हो सकता है। ऊपर के कथन को समझने में भूल हो सकती है। कहा जा सकता है कि सूरदास या कबीरदास की साधना का विशिष्ट रूप किसी सामाजिक परिस्थिति का परिणाम नहीं है, वह व्यक्तिगत चीज है और व्यक्ति विशेष की शिक्षा का फल है, समाज से उसका कोई संबंध नहीं। परंतु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ये लोग अपने आसपास की परिस्थिति से प्रभावित हुए थे। एक, पाठकों के कौतूहल निवारण के लिए हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि उस युग में बनिया लोग लौंग, नारियल, दाख, सुपारी, हींग, मिर्च, पीपर, अजवाइन, कूट, काइफर, सोठी, चिरैता, कटजीरा, आल, मजीठ, लाख, सेंदूर, बाईबिरंग, बहेरा, हर्रे इत्यादि चीजें बेचा करते थे। कहा कान कहा गधे हमसो, जा कारण जुबती सब अटकी सो पूछत है तुम सो, लौंग नारियल दाख सुपारी कहाँ लादे हम आप वही, हींग मिर्च पीपर अजवाइन ये सब बनीज कहाँ वही, कूट काइफर सोठ चिरैता कर जीरा कहू देखत, आल मजीठ लाख से दूर कहू ऐसे ही विधि अवरेखत, बाई बिरंग बहेरा हर्रे कहू बेल गोंद व्यापारी, सूर्य श्याम लड़काई भूली जोबन भय मुरारी। इतिहास के विद्वान पता लगाए कि सूरदास यूरोपियन व्यापारियों द्वारा आनीत मसालों से परिचित थे या नहीं। पृष्ठ संख्या 39। सूरदास का भक्ति सिद्धांत वल्लभाचार्य का उपदेश संभूत माना जा सकता है, पर यह भी क्या सत्य नहीं है कि एक विशेष परिस्थिति ने उन्हें वल्लभाचार्य की ओर प्रवृत्त किया था। इस दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि उस युग के भारतीय समाज के सामने कोई बहुत ऊंचा आदर्श नहीं था। लोग खाते पीते थे, रोगी या निरोगी होते थे, सोते जागते थे और चार दिन तक हंसकर या रोकर मर जाते थे। जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे वे 10-20 मंदिर बनवा देते थे, यज्ञ याग करके 1500 ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन खिला देते थे। ऊंचे वर्ग के लोग अपनी झूठी शान में मत रहते थे। इनका प्रधान कर्तव्य था जो उस युग में धनी आदमी की शोभा समझा जाता था, विलासिता। कवि लोग इस विलासिता की प्रशंसा करते थे, भाट लोग उनका यही यश गाते थे और समाज की निचली श्रेणी के आदमी अपने रक्त तथा मांस को गलाकर इनकी विलासिता की आग को सदा प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन एकत्र कर देते थे। प्रत्येक गृह कला का अखाड़ा था, क्योंकि सम्मिलित परिवार प्रथा तब भी चल रही थी। उस समय जो जब तक कमा सकता था चयन करता था। वृद्ध और शिथिलेंद्रिय होने पर उसी के लड़के वाले उसका निरादर करने लगते थे। ऊपर हमने जो बातें कही हैं वे अनुमान से ही कही गई है। इस अनुमान के लिए सूरदास और कबीरदास में बहुत काफी मसाला है। हम उनके कथनों को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार करना चाहते। कारण यह है कि वे समाज की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ नहीं कहते। उनके कहने का प्रधान लक्ष्य या तो उनकी अस्थिरता दिखाकर वैराग्य भावना को उत्तेजित करना है या सुधार की प्रवृत्ति को जगाना। दोनों ही उद्देश्यों को सामने रखकर समाज के केवल असत अंश पर ही जोर दिया जा सकता है। भक्त और संत कवियों ने वस्तुतः वैसा ही किया है। सूरदास ने एक पद में तात्कालिक मनुष्य जीवन का एक पूरा चित्र खींचा है। है यह तो केवल उसकी विलासमय दशा का, परंतु अगर सूरदास की मनोभावना का परिचय रखते हुए इसका उपयोग किया जाए तो उस समाज का कुछ अनुमान भी किया जा सकता है। इस पद में माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक का जो वर्णन किया गया है वह जीवन की विफलता की एक मनोरंजक कहानी है। नीचे वह पद दिया गया है। चौपरी जगत मढ़े जुग बीते, गुण पासे क्रम अंक चारी गति सारी, न कबहू जीते चारी पसार दिसानी, मनोरथ घर फिरी फिरी गिनी आने, काम क्रोध मद संग मूढ़ मन खेलत हार न माने, मातु गर्भ थीति पाई पिता दस मास उदर से डारे, जन्म छठी छक और बधाई दुई छक दुई पुनि पारे, मुंडन करण वेद व्रत बंध विवाह गवन गृहवासी, आलिंगन चुंबन परिरंभन नखछत चारु परस पर हासी। पृष्ठ संख्या 40। केतकी करुणा बेली चमेली सुमन सुगंध सिंचाए, रचही तल्प निसी भोग चतुरसम बहुत एकादश पाए, उर परसत अब सब अंग विलोकत कीड़त सुख सुख जीके, चोली चीर अलक भूषण फिरी साजत पिय भव नीके, नख सिख साजी सिंगार सकल त्रिय सुंदर वदन निहारत, विविध विलास सकल कौतुक रस छ दस अंक भरी डारत, जोबन मद जन मद मादक मद धन मद विध मद भारी, काम विवश पर नारी भजत दुई पंच सरही फिरी मारी, पौरी पगारी महल मंदिर रची राजत रंग अटारी, भीतर भवन विचित्र विराजत पंच द्वादश द्वारी, कृषि वणिज व्यवहार ग्रामपति है बाधत दर हाथी, करी अभिमान हरी सौ बेमुख संग नहीं को साथी, रतन रजत कंचन मुकुता मणि मानिक संचित कसी कसी, छह सुनी गुनत छहो रस बिलसत कहत अठारह हसी हसी, परिवा तो पंचमी दसमी कहूं पोत टका नित कीना, पंचातिनी परे निकी विधि पर विप्रिनी भोजन दीना, स्वजन समधि परिवार दास दासी जन सब हितकारी, दाव घाव गति देखी करत रति पंजा पारत न्यारी, संध्या तिमिर इंदु दुविधा दुई ठोक निगम पथ चालत, स्त्रवन पुराण शिला तुलसी दल पूजित दुखित ही पालत, पंच वरस दस वरस और जुग छह खेलहु खिलवारी, सिसु गई जीती किशोर काल हति मन कांची करी डारी, पुनी पोछक औरो छक पंजा साजी सारी संख फोरियो, तितने दाऊ बहुरी फिरी खेलो तरुण विरध जुग जोरियो, अमावस पुनो संक्रांति ग्रहण द्विज कर भव मेलत, एकादशी द्वादशी संजम कछु देत छक खेलत, मंगल बुद्ध गुरु शुक्र भान शशि शांति करत ग्रह नीके, राहु केतु चंद्रमा सुसंयत छतन परत हित जी गई, सैन्य उठान अमर्द बिना जन उपवासन तन साधे, द्विचौदशी जन्म निशा शिव पांच चारी मन बाधे। पृष्ठ संख्या 41। द्वारावती गोमती पुष्कर तीर्थ प्रयाग अनहाए, गई न मन की कठिन मलिनता कहाँ भयो भ्रमी आए, बारह वन ब्रज के परिदक्षिण पंच द्वादशे पेलत, जप तप संजम नेम धर्म व्रत करी करी कष्ट सकेलत, सुधि बुधि सुमति सूरजी गई दस निधि जुड़ा जुग बीधे बांधे, धरत चरण निरलरत लकुटले चलन नवल कई कापत कास सफक कर तन गिरिधर धुक तदा बिछुरत भाकत सुत वनिता हित पाचो नेहु ना तो सब ही टूटे दाव कुदाव परे दुई पंचत जोरा दुई जुग फूटे बाल किशोर तरुण जर जुग सो सुपक सारी ढिग ढारी सूर एक यो नाम बिना नर फिरी फिरी बाजी हारी। सूर्यदास ने मनुष्य की इस विफलता का कारण भजन का अभाव बतलाया है। अगर भजन हो तो यह सारी विफलता एक महती सफलता के रूप में परिवर्तित हो जाए। सूर्यदास ने वस्तुतः अपने काल की सारी विलासिता का सुंदर उपयोग किया है और कोई भी सहृदय इस बात को अस्वीकार नहीं करेगा कि सचमुच उन्होंने भजन के पारस पत्थर से स्पर्श करा के विलासिता रूप कुधातु को सोना बना दिया है। उस युग के मनुष्य की विफलता की प्रथम सीढ़ी है आलिंगन चुंबन परिलंबन नख छत चारु परस्पर हाथी और सूरदास से अधिक किस कवि ने इसका सफल वर्णन किया है। अब हम टीका युग की प्रधान समस्या के साथ सूरदास का संबंध समझ सकते हैं। टीका युग के पंडित मनुष्य की दुर्बलता को दबाने के लिए कठोर से कठोर विधि व्यवस्था का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने देखा वे असफल रहे। टीका युग के पंडितों में एक बड़ी विशेषता यह थी कि वे हिंदू जाति की रक्षा के लिए कोई नया पंथ नहीं चलाना चाहते थे। शास्त्रों की आड़ में वे अपना मत प्रचार करना नहीं चाहते थे। सूरदास ने भी ऐसा नहीं किया। सूरदास चाहते तो आसानी से कोई संप्रदाय खड़ा कर सकते थे। उनसे कहीं कम प्रभावशाली महात्माओं ने अलग अलग संप्रदाय निकाले, परंतु सूरदास ने ऐसा नहीं किया। महापुरुषों की विशेषता यह है कि वे मनुष्य की दुर्बलताओं को पहचानते हैं और इन्हीं दुर्बलताओं को उनकी रक्षा के लिए उपयुक्त प्रहरी बना देते हैं। सूरदास ऐसे ही महापुरुष थे। वे अपने प्रयत्न में सफल हुए। ये दुर्बलताएं हैं क्या चीज? नरक भय अभिशाप दंड आदि के नाम पर मानव जाति के कल्याणकामी शास्त्रकारों ने विधि निषेध की सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। परंतु जिस प्रकार हवा बांधने से नहीं रुकती उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति भी बंधन से नहीं बनती। पृष्ठ संख्या 42। एक तरफ बांधने से वह दूसरी ओर निकल पड़ती है भयानक वेग से। यह दूसरी ओर निकली हुई प्रवृत्तियां मनुष्य की दुर्बलताएं हैं। जिन दिनों टीका के युग विद्वान तथा ही और अपिच की धुआंधार वर्षा के साथ शास्त्रों का आदेश मानव समाज पर लाद रहे थे, उन्हीं दिनों जोबन मद जन मद मादक मद धन मद विध मद भारी काम विवश पर नारी भजत दुई पंच सरही फिरी मारी। सूरदास आदि संत कवियों ने इसी विरुद्धगामी प्रवृत्ति को भगवान की ओर फेर देने की चेष्टा की और आश्चर्यजनक सफलता पाई। प्रमाण चाहते हो तो सूरदास यहाँ है, तुलसीदास यहाँ है, रसखान आदि यहाँ है, घनानंद यहाँ है, कितना गिनावे। कवि कुल गुरु रविन्द्रनाथ ने सूरदासेर प्रार्थना नामक एक लंबी कविता लिखी है। दृश्य उस समय का है जब एक रमणी पर आसक्त हो चुकने के बाद सूरदास को आत्मज्ञान हुआ था। हाथ में छुरी लेकर वे उस रमणी से अपनी आंखों को फोड़ देने का अनुरोध कर रहे हैं। उसकी अंतिम पंक्तियों में वे कहते हैं, तो फिर वही हो देवी, विमुख ना हो, इसमें दोष ही क्या है, हृदयावकाश में जगी रहने दो ना अपनी देहहीन ज्योति, वासना मलिन आंखों का कलंक उस पर छाया नहीं डालेगा, अंध हृदय चीर दिन तक नील उत्पल पाता रहेगा। तुम मैं देखूंगा अपने देवता को, देखूंगा अपने हरि को, तुम्हारे आलोक में जगा रहूंगा इस अनंत विभावरी रात्रि में। सचमुच सूरदास की सहज साधना ने अपने लौकिक प्रेम में भगवान की मूर्ति देखी है, शुद्ध निर्मल निष्कलंक। धन्य हो सूरदास, धन्य है तुम्हारी साधना। रविन्द्रनाथ के साथ ही हम भी पूछते हैं, सत्य करे कहो मोरे है वैष्णव कवि, कोथा तुम्ही पे छिले ए प्रेम छवि, कोथा तुम्ही शिखे छिले ए प्रेम गान, बिरहता पीत हेरी काहार नयान, राधिकार अश्रु आखी पड़े छिलो मने, बीजन बसंत राते मिलन शयने, के तुम्हारे बेधे छील दूठी बाहु डोरे, आपनारे हृदय आगाध सागरे, रेखे छील मग्न करी, ए तो प्रेम कथा, राधिकार चित्त दीर्ण तीव्र व्याकुलता, चूरी करी लई आच कार मुख कार आखी हते, आज तार नाही अधिकार से संगीते, तारी नारी हृदय संचित तार भाषा हते, तारे करीबे वंचित चीर दिन। ब्रैकेट स्टार्ट। सच बताओ हे वैष्णव कवि, तुमने यह प्रेम चित्र कहाँ पाया था? यह विरह तप्त गान तुमने कहाँ से सीखा था? किसकी आंखें देखकर राधिका की आंसू भरी आंखें याद आ गई थी? निर्जन वसंत रात्रि की मिलन शैया पर किसने तुम्हें भुज पासों से बांध रखा था और अपने हृदय के अगाध समुद्र में मग्न कर रखा था? इतनी प्रेम कथा राधिका की चित्त विदीर्ण कर देने वाली तीव्र व्याकुलता तुमने किसके मुख से और किसकी आंखों से चुरा ली थी? आज क्या इस संगीत पर उसका ब्रैकेट में कुछ भी अधिकार नहीं है? क्या तुमने उसी नारी हृदय की संचित भाषा से उसी को सदा के लिए वंचित कर दोगे? ब्रैकेट बंद। पृष्ठ संख्या 43। सूरदास आदि भक्त कवियों ने अपने लौकिक प्रेम का सर्वस्व भगवान को समर्पित किया है। जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि हम जो चीज देवता को दे सकते हैं वही अपने प्रिय को देते हैं, और जो प्रियजन को देते हैं वही देवता को देते हैं, और हम पाएंगे कहाँ? देवता को हम प्रिय कर देते हैं, प्रिय को देवता। देव तारे यहाँ दीते पारी दी ताई, प्रिय जने यहाँ दीते पाई। ताई दिए देव तारे आर पावो को था, देव तारे प्रिय करी पियरे देवता। वे सूरदास की कविताओं से नाक भौं सिकोड़ते हैं, उपाय क्या है? 5। हिंदी साहित्य और वैष्णव धर्म। मध्य युग के भक्ति की एक नई धारा भारतीय महाद्वीप के इस छोर से उस छोर तक बह गई और देखते देखते इस विशाल देश को इस नए रूप में बदल दिया। भाषा शास्त्र के प्रकांड पंडित डॉक्टर ग्रियर्सन मध्य युग के इस आंदोलन के संबंध में कहते हैं, बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त अर्थात पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखलाई दी। कोई हिंदू नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, कोई भी इसके प्रादुर्भाव का काल निश्चित नहीं कर सकता, किंतु वे सभी शास्त्रीय ग्रंथ जो इस भक्ति के संबंध में लिखे गए हैं और जिनका काल निश्चय पूर्वक बताया जा सकता है, ईसाई संघ के बहुत दिन बाद लिखे गए हैं, ". इसीलिए डॉक्टर साहब इस नई बात का अनुभव कर सके हैं। आपका कहना है कि यह बात मद्रास प्रांत में आकर बस गए नेस्टोरियन संप्रदाय के ईसाइयों से ग्रहण की गई है। 1। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की वैष्णव कविता नामक कविता से। 2। ग्रियर्सन मॉडर्न हिंदुज्म एंड इट्स डेप्थ टू द नेस्टोरियन जनरल ऑफ द रॉयल एसाइटिक सोसाइटी 1907। पृष्ठ संख्या 44। यही विद्वान एक दूसरी जगह लिखते हैं, कोई भी मनुष्य जिसे 15वीं और बाद की शताब्दियों का भारतीय साहित्य पढ़ने का अवसर मिला है, उस भारी व्यवधान को लक्ष्य किए बिना नहीं रह सकता जो प्राचीन और नई धार्मिक भावनाओं में विद्यमान है। हम अपने को एक ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी कहीं अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। धर्म ज्ञान का विषय नहीं, रस ब्रैकेट में इमोशन का विषय हो गया था। इस समय से हम साधना और प्रेमोल्लास के देश के सामने आते हैं और ऐसी आत्माओं का साक्षात्कार करते हैं जो काशी के दिग्गज पंडितों की जाति की नहीं है, बल्कि जिनका संबंध मध्य युग के यूरोपियन मर्मी बर्नर्ड ऑफ क्लेयर वॉक्स, थॉमस ए कैंपेस, एकहार्ट और सेंट थेरेसा से है। डॉक्टर ग्रियर्सन के इन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट ही प्रकट हो जाता है कि भारतीय मध्य युग का भक्ति आंदोलन संसार के इतिहास में बेजोड़ है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, इस युग का धर्म ज्ञान का विषय नहीं, रस का विषय है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस युग के धर्म और कला को अलग अलग रखकर विचार नहीं किया जा सकता। क्या वास्तुशिल्प, क्या चित्रकला, क्या काव्य, क्या नृत्य, क्या संगीत, सर्वत्र एक ही बात दिखलाई देती है और वह यह कि समस्त भारतीय अंतरीप एक सिरे से दूसरे सिरे तक भक्ति विशेषकर वैष्णव भक्ति की शक्तिशाली तरंग से आक्रांत हो उठा था। इस बात का महत्व और तब भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि इसी युग में भारतवर्ष विदेशी धर्म और विजातीय संस्कृति का करुणाजनक शिकार बना हुआ था। ग्रियर्सन को ही नहीं, उनके पूर्ववर्ती अनेक पंडितों को भी यह संदेह हो चुका था कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। वेबर और लासेन ने भी यह संदेह किया था। डॉक्टर साहब की शंकाओं का समाधान हमने इसी पुस्तक में अन्यत्र किया है। ग्रियर्सन साहब के सामने ही संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित श्रीयुक्त अब डॉक्टर गीत ने उनकी प्रायः समस्त युक्तियों का खंडन कर दिया था। परंतु जब हम मध्य युग के उस रहस्यमय युग में एकाएक भक्ति आंदोलन के प्रबल स्रोत का अनुमान करते हैं, तो इन विदेशी पंडितों के इस विश्वास को आश्चर्यजनक नहीं कह सकते कि भारतीय साधना में भक्ति बाहरी उपादान है। एक ग्रियर्सन भक्ति मार्ग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स 1909। दो इन सब बातों की विस्तृत आलोचना के लिए निम्नलिखित कई प्रबंध द्रष्टव्य हैं। एक मॉडर्न हिंदुज्म एंड इट्स डेप्थ्स टू द नेस्टोरियन। दो द चाइल्ड कृष्णा प्रश्न संख्या 45। उनका यह भ्रम स्वाभाविक है। असल बात यह है कि जिस प्रकार मनुष्य की दुर्बल और रोगाक्रांत होने पर उसकी जीवन शक्ति एकाएक प्रबल वेग से जाग पड़ती है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के रोगाक्रांत होने पर उसकी जीवनी शक्ति अर्थात भक्ति साधना वेग के साथ जाग पड़ी थी। हम इस प्रश्न के ऊपर फिर विस्तृत विवेचन करेंगे। हिंदी साहित्य पर वैष्णव प्रभाव का अध्ययन एक विशाल कार्य है। मध्ययुग का हिंदी साहित्य कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर समस्त वैष्णव साहित्य ही है। मिश्र बंधुओं ने जिन 9 महाकवियों को हिंदी का नवरत्न माना है, जिनकी संख्या बाद में 10 करनी पड़ी है, उनमें से ये 7 तो नक से सिख तक वैष्णव है, 3 चंद, कबीर और भूषण और चाहे कुछ भी हो अवैष्णव नहीं है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 2 भागों में जिन कवियों की चर्चा है उसमें 85% पूरे वैष्णव है, शेष में बहुत ही कम अवैष्णव है। साहित्य की धर्म के साथ इस प्रकार की अद्भुत एकात्मता संसार के इतिहास में विरल नहीं है। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण वैष्णव साहित्य और वैष्णव साधन की एकता संसार के इतिहास में एक नई बात है। वह बात क्या है यह समझने के लिए हमें इस युग तक के साहित्यिक और धार्मिक विकास की एक साधारण जानकारी आवश्यक है। भारतीय नाट्य शास्त्र के आरंभ में ही एक ऐसी कथा आती है जो विद्वानों को चक्कर में डाल देती है। इस कथा के अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5वें वेद की रचना की थी। साधारणतया हिंदू आचार्य किसी नए शास्त्र की नींव डालते समय उसका संबंध किसी न किसी प्रकार वेदों से जरूर स्थापित करते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना के समय भी यह बात अवश्य प्रस्तुत हुई होगी, परंतु जब कोई सीधा संबंध मिलना असंभव हो गया होगा तब उक्त कथा के बल पर एक 5वें वेद की कल्पना अवश्य समझी गई होगी। मामला पेचीदा इसलिए हो जाता है कि वस्तुतः वेदों में ऐसे कथोपकथन की कमी नहीं है जिन्हें आसानी के साथ नाटकों का मूल रूप कह सकते थे। फिर नाट्य वेद की कल्पना शास्त्रकारों ने क्यों की? प्रभावशाली विचार के लगभग सभी यूरोपियन पंडितों ने इस पर अपनी राय दी है। एक इन मतों के लिए ए बी गीत का इंडियन ड्रामा देखिए। पृष्ठ संख्या 46। फलतः मदिर हिन्ना मुंडे मुंडे तो हो गई, परंतु कोई उचित समाधान नहीं हो पाया। हमारे समझ में इस मामले का इतना पेचीदा हो जाना एक कल्पित किंतु भ्रमात्मक सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर निर्भर है। यूरोपियन पंडित यह मानकर ही कलम उठाते हैं कि भारतवर्ष में जो कुछ है वह वेदों से ही शुरू होता है। हमें श्री मनमोहन घोष का यह मत ठीक जान पड़ता है कि नाटक इस देश में आर्यों के आगमन के पूर्व ही वर्तमान थे, परंतु उनमें पात्रों की बातचीत नहीं रहा करती थी, वे अभिनय प्रधान हुआ करते थे। इन अभिनयों का काम था रस का उद्रेक। आर्य संसर्ग के बाद अभिनय के साथ साथ कथोपकथन भी मिल गया, परंतु नाटक का प्रधान उपकरण अभिनय रहा करता था और लक्ष्य रस निष्पत्ति। प्राचीन संस्कृत नाटकों में लज्जाम नाट्यति, वृक्ष सेचनम नाट्यति आदि प्रयोग इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल के प्रसिद्ध टीकाकार राघव भट्ट ने वृक्ष सेचन, भ्रमर बाधा निवारण आदि अभिनयों की भंगी का भी निर्देश किया है। रस नाटक का ही विषय था। इस बात का और भी स्पष्ट प्रमाण है अलंकारिकों की रस सूत्र की व्याख्या। वस्तुतः मम्मट ने जिन अलंकारिकों का मत भारतीय नाट्य सूत्र के सिलसिले में उद्धृत किया है वे सभी लोलट, संकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त नाट्य शास्त्र के ही व्याख्याता हैं और दर्शक के मन में रसोद्रेक की बात ही कहते आए हैं। नाटक में रस की भांति ही अलंकार स्फुट काव्य का विषय समझा जाता था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अलंकार संप्रदाय के प्राचीनतम आचार्यों दंडी और भामा ने अलंकार को ही प्रधान माना है। रस की चर्चा तो बहुत गौण है। उनकी पुस्तकों से यह अनुमान करना बिल्कुल कठिन नहीं है कि वे रस को काव्य अर्थात स्फुट श्लोक का विषय ही नहीं समझते। आठवीं शताब्दी के आसपास अलंकार शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय पर जोर पकड़ता दिखलाई देता है। ध्वनि या व्यंग को काव्य की आत्मा मानकर और ध्वनि में भी रस ध्वनि को सर्वोत्तम स्थान देकर इस संप्रदाय ने अलंकार को अभिनव जीवन दिया है और एक बड़ा कार्य यह किया है कि रस और अलंकार दोनों को नाटक और स्फुट काव्य में समान रूप से उपयोगी बताया। एक अभिनय दर्पण की प्रस्तावना तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम राघव भट्ट की टीका निर्णय सागर वृक्ष सेचन पृष्ठ संख्या 27 भ्रमर बाधा पृष्ठ संख्या 34 श्रृंगार लज्जा पृष्ठ संख्या 40 विषाद पृष्ठ संख्या 49 मुखोन्नयन परिहार पृष्ठ संख्या 109 पुष्मा वचय पृष्ठ संख्या 115 प्रसाधन पृष्ठ संख्या 129 से लेकर 132 गतिभंग पृष्ठ संख्या 139 अवतरण पृष्ठ संख्या 189 रथाधिरोहण पृष्ठ संख्या 222 3 काव्य प्रकाश का चतुर्थ उल्लास 4 इसीलिए रुयक अलंकार सर्वस्व पृष्ठ संख्या 7 में कहते हैं तदेवम अलंकार एव काव्ये प्रधानम इति प्रायशानाम मतम। 5 शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, एक अभिधा अर्थात कोश व्याकरण सम्मत शब्द का सांकेतिक अर्थ बतलाने वाली शक्ति, 2 लक्षणा अर्थात संकेतार्थ से संबद्ध अन्य लक्षित अर्थ को बतलाने वाली शक्ति, और 3 व्यंजना अर्थात अभिधेय और लक्ष्य के अतिरिक्त उनसे संबद्ध या असंबद्ध अन्य अर्थों को व्यंग करने वाली शक्ति। प्रथम ध्वन्यालोक में व्यंग अर्थ ध्वनि की प्रधानता की युक्ति पूर्वक प्रतिष्ठा की गई है। ध्वन्यालोककार आनंद वर्धन इस मत को व्याकरणों के स्फोटवाद से उद्भूत बताते हैं, परंतु स्फोट से इसका संबंध केवल इसीलिए बताया गया है कि इस मत को नवीन कहकर उड़ा न दिया जा सके। जो हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि ध्वनि का जो सर्वांगपूर्ण विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है वह इस बात का प्रमाण है कि इसके पूर्व बहुत ही इस मत का अस्तित्व था। स्वयं आनंद वर्धन ही कहते हैं पृष्ठ संख्या 47 ध्वनि संप्रदाय ने अलंकार प्रधान काव्य को अवर या अश्रेष्ठ कोटि में रखा। यद्यपि साहित्य दर्पणकार ने रस को काव्य की आत्मा बताया, परंतु असल में भी ध्वनि को ही काव्यात्मा समझते रहे। मुख्य बात तो यह है कि 15वीं शताब्दी तक ध्वनि संप्रदाय का ही बोलबाला रहा। साहित्य दर्पण में शायद सबसे प्रथम इस शास्त्र में नायिका भेद का प्रवेश हुआ। यद्यपि ध्वनि संप्रदाय के आचार्यों ने रस को काव्य का सर्वश्रेष्ठ उपादान मान लिया था, परंतु रस को इतना अधिक स्थान नहीं दिया गया कि उसमें नायिका भेद भी मिला दिया जाए। रस रूपक विवेचना का प्रधान विषय समझा जाता था और उसी में नायिकाओं का वर्गीकरण भी सम्मिलित रहता था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 15वीं शताब्दी में ही नायिका भेद और अलंकार एक साथ विविक्त हुए। यह शताब्दी वस्तुतः देशी भाषाओं के साहित्य की उन्नति की शताब्दी है। साहित्य दर्पण के बाद एक ऐसे मत का प्रादुर्भाव दिखलाई देता है जो रस के अतिरिक्त अन्य किसी बात को काव्य विवेचना का विषय समझता ही नहीं या समझकर भी उसे गौण स्थान देता है। इसी तरह एक दूसरा संप्रदाय ऐसा दिखाई देता है जो अलंकार के अतिरिक्त अन्य किसी विषय की परवाह नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही आचार्य इन दोनों विषयों पर अलग अलग ग्रंथ लिखता है, परंतु इस बात का अच्छा अध्ययन करना हो तो संस्कृत को छोड़कर देसी भाषाओं के उदीयमान साहित्य की ओर देखना होगा। यहाँ वह अद्भुत बात दिखलाई देती है जो हजारों वर्ष के भारतीय इतिहास में बेजोड़ कही जा सकती है। संसार की बात तो हम नहीं जानते, वह बहुत बड़ा है, पर हमारी जानी हुई दुनिया में यह बात अद्वितीय है। यहाँ हम देखते हैं कि रस विशेषकर रसों के राजा श्रृंगार के आलम्बनों और उद्दीपनों का वर्गीकरण हो रहा है और उनके उदाहरणों के बहाने भगवान की लीला गाई जा रही है। आगे के सु कवि रिझही तौ कविताई न तौ राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है, अर्थात कविता करने के बहाने परम आराध्य का भजन या परम आराध्य भजन के बहाने कविता। पृष्ठ संख्या 48 ललित कला के सुकुमार प्राण के साथ धार्मिक और दार्शनिक साधना के परम लक्ष्य का इस प्रकार एकीकरण अन्यत्र दुर्लभ है। इसी युग की देशी भाषाओं के साहित्य का संसार की साहित्यिक साधना में यही महान दान कंट्रीब्यूशन है। बंगाल में सर्वप्रथम रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि नामक संस्कृत ग्रंथ में इस प्रकार से रस का विवेचन किया। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में से थे। इनका समय 15वीं शताब्दी का अंत और 16वीं शताब्दी का प्रारंभ था। यही पुस्तक संस्कृत में प्रथम बार भक्ति और अलंकार शास्त्र को एक रूप देकर लिखी गई। इसके बहुत पहले जयदेव विद्यापति और चंडीदास ने क्रमशः संस्कृत मैथिली और बंगला में राधा कृष्ण की लीलाओं का गान किया, परंतु रस शास्त्र के नाम पर नायक नायिकाओं का प्रथम वर्गीकरण यही था, जिसमें उदाहरण के लिए राधा माधव की लीलाओं का वर्णन रखा गया। इस ग्रंथ में उज्ज्वल या मधुर रस को, जिसे ग्रंथकार भक्ति रस भी कहता है, ब्रैकेट में मधुराख्यो भक्ति रस 1-3 ब्रैकेट बंद, मनुष्य का परम प्राप्तव्य बताया गया है। मधुर रस के आलम्बन श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं। गौड़ीय वैष्णव के मत में 5 रस होते हैं, शांत हास्य प्रीति सख्य या प्रेम वात्सल्य और माधुर्य। इसी माधुर्य को उज्ज्वल रस कहते हैं। इसे ग्रंथकार भक्ति रसराट या भक्ति रसों का राजा बताता है। इसके बाद बंगाल में नायिकाओं और नायकों के वर्गीकरण के अनुसार पद लिखने की चाल से चल पड़ी, परंतु इस प्रकार की रस व्याख्या से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संप्रदाय का मुख्य विषय कविता नहीं भक्ति था। हिंदी में जो रस ग्रंथ लिखे गए उनमें भक्ति और कवित्व समान भाव से गुथे हुए थे। कहीं कहीं तो कवित्व ही प्रधान है, भक्ति गौण। हम यहाँ सूरदास तुलसीदास जैसे कवियों की बात नहीं कर रहे, केशव मतीराम और जयदेव जैसे रस ग्रंथकारों की बात कर रहे हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन दिनों उज्ज्वल नीलमणि की रचना हुई उससे कुछ पहले ही हिंदी में इस प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध थे। उज्ज्वल नीलमणि ने भक्ति रस की जो सर्वांगपूर्ण व्याख्या की है वह सर्वस्व में नहीं तो अधिकांश में नवीन है, ऐसा एकाएक नहीं हो सकता। इसके पूर्व की पर्याप्त चर्चा रही होगी। इसी तरह हिंदी के जिस ग्रंथ की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह पहला प्रयत्न नहीं जान पड़ता। साधारण धारणा यह है कि केशवदास ही हिंदी के प्रथम रसाचार्य हैं, परंतु बात असल में यह नहीं है। कृपाराम नामक एक अन्य कवि ने सन 1541 ईस्वी में ही रस पर एक सुंदर ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ का नाम हित तरंगिणी है। इसमें रसों का विषय बहुत ही विस्तार पूर्ण और मनोहर छंदों द्वारा कहा गया है। एक बरनत कवि श्रृंगार रस छंद बढ़े विस्तार, मैं बरन्यो दोहानी बीच आते सुघर विचार, पृष्ठ संख्या 49। इस कवि की भाषा सुसुष्ठु ब्रज भाषा है। इन्होंने लिखा है कि अन्य कवि बड़े छंदों में श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, परंतु मैंने दोहा में इसलिए लिखा है कि उसमें थोड़े ही अक्षरों में बहुत अर्थ आ जाता है। इस कथन से प्रकट होता है कि उसमें उस समय बहुत से कवि थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनके ग्रंथ अब नहीं मिलते। इसलिए इस ग्रंथ में पहले पहल राधा कृष्ण की प्रेम लीला को उदाहरण के रूप में लिखते पाया जाता है। आजू सकारे हो गई नंदलाल हितताल, कुमुद कुमुदनी के फटू निरखे औरे हाल। यहाँ यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हिंदी में राधा माधव की प्रेम गाथाओं का प्रचार भक्त कवियों के कंठ से इसके बहुत पहले हो चुका था। इस श्रेणी के कवि भक्ति के आवेश में ही कविता, ब्रैकेट में गान कहना अधिक ठीक होगा ब्रैकेट बंद, लिखा करते थे, परंतु कृपा राम की श्रेणी के आचार्य कविता करने बैठते थे और उस पर भक्ति का पुट डाल देते थे। यह बात ध्यान देने की है कि इस श्रेणी के आचार्यों का वर्गीकरण गौड़ीय वैष्णव की श्रेणी का नहीं है, इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रभाव गौड़ीय वैष्णव का है। फिर यह बात हिंदी में कहां से आई? एक ध्यान देने की बात है वह यह कि 15वीं शताब्दी के पहले यह धारा हिंदी साहित्य में एकदम अपरिचित है। रसाचार्यों की बात छोड़ भी दी जाए तो भी भक्त कवियों के गान भी 15वीं शताब्दी के पहले दृष्टिगोचर नहीं होते। एक और तो इन कवियों और रसाचार्यों पर गौड़ीय प्रभाव का कोई चिन्ह दिखलाई नहीं देता, दूसरी ओर इस प्रकार के प्रेम गानों के सभी पुराने रचयिता जयदेव विद्यापति चंडीदास हिंदी के किसी भी वैष्णव कवि से पूर्ववर्ती और पूर्व प्रदेश के ठहरते हैं। राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का अगर कोई सीधा संबंध कहीं से मिलता है तो इन्हीं पूर्ववर्ती भक्तों से। महाप्रभु चैतन्य देव जो जयदेव विद्यापति और चंडीदास इन तीनों कवियों के काव्य रसिक थे, वृंदावन से आए थे और उन्होंने ही उन्हें नया रूप दिया था। उनके अनेक शिष्य वहां आजीवन के लिए रह गए थे और उस संप्रदाय के कितने ही भक्त परवर्तीय हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भी हुए। इस प्रकार पूर्वी प्रदेशों से इस धारा का साक्षात संबंध भी दिखलाई देता है। इन पर दो परस्पर विरोधी बातों का समाधान क्या है? यूरोपियन पंडितों का रास्ता सीधा है, वैष्णव भक्त भी भगवान को पतित पावन कहते हैं, करुणा सिंधु कहते हैं और ईसाई भक्त भी ऐसा ही कहते हैं। एक मित्र बंधु विनोद पृष्ठ संख्या 276 ब्रैकेट में तृतीय संस्करण लखनऊ 1986 ब्रैकेट बंद। दो कृपाराम के अतिरिक्त गोप ब्रैकेट में 1615 ब्रैकेट बंद करने सर और मोहनलाल मिश्र ने रीति ग्रंथ लिखे थे, ये तीनों ही केशव के पूर्ववर्ती थे। ब्रैकेट में देखें पंडित रामचंद्र शुक्ल की हिंदी शब्द सागर की भूमिका पृष्ठ संख्या 121 से 122 ब्रैकेट बंद। परंतु हम नहीं जानते कि इन्होंने अपने ग्रंथों में राधा माधव की लीलाओं को उद्धृत किया है या नहीं। पृष्ठ संख्या 50 इसीलिए भक्ति ईसाइयत की देन है। कुछ कहते हैं यह मद्रास में बसे हुए नेस्टोरियन ईसाइयों की देन है, कुछ कहते हैं बैक्टीरिया या इसी कुल हृदय से आई है और कुछ कहते हैं यह सूफियों की मध्यस्थता में आई है। ऐसे लोगों की दृष्टि में संसार में जो कुछ अच्छा है वह यूरोप और ईसाई धर्म में ही है, इसीलिए हिंदुओं ने भक्ति को भी निश्चय ही वहीं से उधार लिया होगा। खुल जाओ सुमसुम और लो वह दरवाजा खुल गया। इस स्थान पर यह कह देना उचित होगा कि हिंदी साहित्य में भक्ति धारा को बहाने का श्रेय निश्चय ही दो प्रसिद्ध आचार्यों को प्राप्त है, राम भक्ति की धारा के प्रवर्तक आचार्य रामानंद है। इस धारा को दो भागों में विभक्त पाया जाता है, प्रथम में वे संत हैं जो शास्त्रों और रूढ़ियों के कायल नहीं है, इन्हें निर्गुणवादी भक्त भी कह सकते हैं, कबीर दादू नानक रैदास आदि भक्त इसी श्रेणी के हैं। दूसरे श्रेणी में तुलसीदास जैसे महात्मा है जो भक्तिवादी और शास्त्रों के सामंजस्य के अनुसार साधन मार्ग का निर्देश करते हैं। कृष्ण भक्ति की धारा के प्रधान प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, परंतु केवल इतना कह देने से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। कोई भी मतवाद जब किसी नवीन भूमि में प्रवेश करता है तो वहाँ की रीति नीति आचार विचार से मिलकर एक नया रूप धारण करता है। महाराष्ट्र की भक्ति दूसरी चीज है, उत्तर प्रदेश की दूसरी और बंगाल की और कुछ। इनके मूल सिद्धांत एक ही हो सकते हैं, परंतु इनके आकार प्रकार सर्वथा अलग हैं। रामानंद प्रवर्तित रामधारा कबीर में एक रूप धारण करती है और तुलसीदास में दूसरा। जब व्यक्ति विशेष के कारण साधना का रूप बदल सकता है तो देश विशेष के साथ क्यों नहीं बदल सकता। जो लोग कुछ दाक्षिणात्य आचार्यों के दार्शनिक और धार्मिक मतों का अध्ययन करके ही तुलसीदास और सूरदास के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं वे लोक मत के साथ अविचार करते हैं। जिस भक्ति साधना ने देव मती राम और पद्माकर को पैदा किया वह किसी आचार्य की ही साधना नहीं थी। आचार्य विशेष की दीक्षा तो उस पर केवल रंग चढ़ा गई, मूल कंकाल कुछ और ही था। हमारा विश्वास है कि 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के जन साधारण में एक साधना विकसित होती जा रही थी। 15वीं शताब्दी में वह एकाएक फूट उठी। ग्रियर्सन साहब का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि अचानक बिजली के समान यह बात भारतीय अंतरिक्ष के इस छोर से उस छोर तक चमक गई। परंतु इसके लिए 400 वर्ष से मेघ पूंजीभूत हो रहे थे और केवल बिजली ही नहीं चमकी। 15वीं शताब्दी में भक्ति की जो वर्षा आरंभ हुई वह 400 वर्ष तक बरसती ही रही, जरा भी नहीं रुकी। एक मॉडर्न हिंदुज्म एंड इट्स डेप्थ टू द नेस्टोरियन 1907 दो कृष्णा पृष्ठ संख्या 51। इन चार शताब्दियों में जनसाधारण क्या सोच रहा था यह जानने के पहले भक्ति आंदोलन की कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना होगा। ये बातें इस प्रकार हैं: एक प्रेम ही परम पुरुषार्थ है मोक्ष नहीं, प्रेमा कुमार्थो महान। दो भगवान के प्रति प्रेम कौलिन्य से बड़ी चीज है। तीन भक्त भगवान से भी बड़ा है। चार भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान और पांडित्य व्यर्थ है। पाँच नाम रूप से भी बढ़कर है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह मत ब्राह्मण धर्म का विरोधी तो नहीं था परंतु उसका संपूर्ण अनुगामी भी नहीं था। महायान मत से इसका अंतर यही था कि वह ब्राह्मण धर्म का पूर्ण विरोधी था और यह उसका अंग होकर भी स्वाधीन था। इन चार शताब्दियों में भारतीय धर्म मत की क्या अवस्था थी यह बात हिंदू धर्म के संस्कृत ग्रंथों से बहुत कम समझ पड़ती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है संस्कृत ग्रंथों की दृष्टि से यह युग टीका युग कहा जा सकता है। कोई अच्छा ग्रंथ अगर इस जमाने में लिखा गया हो तो वह टीकाए ही थी। धर्म शास्त्रों में व्यवस्था मूलक अनेक ग्रंथ लिखे गए जो निश्चय ही टीका श्रेणी में आते हैं। इन टीकाओं और निबंधों से उस युग की भयानक सतर्कता का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। जान पड़ता है शास्त्रीय आदेशों के पालन में ज्यों ज्यों शिथिलता आती रही त्यों त्यों ब्राह्मण आचार्य अधिक सतर्क भाव ग्रहण करते जा रहे थे। इन अनुपस्थितिक मूलक निगेटिव प्रमाणों के बल पर ही यही अनुमान होता है कि शास्त्रों की व्यवस्थाओं से लोकमत बेपरवाह होता जा रहा था। उस युग के ग्राम गीत और प्रवाद यदि उपलब्ध होते तो हम यह आसानी से जान सकते कि जन साधारण का मत उस समय क्या था, परंतु अभी तक दुर्भाग्यवश इस दिशा में कुछ संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। जो हो, हिंदी साहित्य की सहसवा अवस्था में ही हमें एक महात्मा के दर्शन होते हैं जो एक विशेष धर्म मत के अन्यतम प्रतिष्ठाता है। ये है गोरखनाथ। अब आप नाथ संप्रदाय के आचार्य थे। यह संप्रदाय महायान बौद्ध धर्म का उत्तराधिकारी था। तंत्र और योग की क्रियाएं इस मत के प्रधान अंग हैं। कबीरदास पर गोरखनाथ की निर्गुण साधना का प्रभाव स्पष्ट ही लक्षित होता है। हिंदी साहित्य के निर्गुण अंग पर इस संप्रदाय का पर्याप्त प्रभाव है, परंतु हम आज उस दिशा की ओर अग्रसर होना नहीं चाहते। गोरखनाथ का उल्लेख हमने इसलिए किया है कि उनका हिंदी के शिशुकाल में ही दिखलाई देना एक विशेष अर्थ रखता है। नाथ संप्रदाय का सीधा संबंध महायान बौद्ध धर्म से है। यह संप्रदाय बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक बहुत प्रभावशाली हो गया था। हिंदी साहित्य के गोरखनाथ एक और उस युग की हिंदी भाषी जनता का संबंध महायान बौद्ध से जोड़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म की शाखा आचार्यों की दृष्टि में कितनी भी शून्यवादी क्यों न रही हो, उस धर्म के अनुयायी अधिकांश जन साधारण में सैकड़ों देव देवियों की पूजा चल पड़ी थी। उनके देव देवियों प्रज्ञा परिमिता अवलोकितेश्वर मंजूश्री की मूर्तियाँ बहुत कुछ वासुदेव और लक्ष्मी की मूर्तियों के समान है। प्रसिद्ध डॉक्टर कर्ण ने बताया है कि वैष्णव भक्तिवाद इन महायानों की भक्ति का ही विकसित रूप है। यहाँ तक कि नाम संकीर्तन भी, जिसे ग्रियर्सन साहब ईसाई धर्म का प्रभाव बताते हैं, महायान धर्म वालों की चीज है। आचार्य क्षिति सेन मोहन ने चीन और भारत की संकीर्तनों का साम्य देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि महायान मत ही संकीर्तन प्रथा का मूल उत्स है। बंगाल के इतिहास से यह बात अलग नहीं की जा सकती कि बौद्ध धर्म के ह्रास होते ही महायान मत के नाना पंथ वैष्णव में शामिल हो गए। इस प्रकार आउल बाउल आदि अनेक सहजिया पंथ, जिनकी साधना प्रेम मूलक थी और जो परकीय प्रेम को सहज साधना का प्रधान उपाय समझते थे, 16वीं शताब्दी में नित्यानंद के वैष्णव झंडे के नीचे एकत्र हुए। इन्हीं नित्यानंद को महाप्रभु चैतन्य ने अपने संप्रदाय में निमंत्रित किया और यहीं से गौड़ीय वैष्णव धर्म ने अभिनव रूप धारण किया। यह धर्म मत समस्त बंगाल और उड़ीसा में तथा अंशतः असम में पहुंचा। उड़ीसा के धर्माचार्यों में चैतन्य और नागार्जुन दोनों के मतों के समन्वय से एक विशाल वैष्णव बौद्ध साहित्य निर्मित हुआ। नित्यानंद के साथ जो शक्ति चैतन्य संप्रदाय में प्रविष्ट हुई वह नई नहीं थी, उनके पीछे भी 300-400 वर्ष का इतिहास था। सौभाग्यवश बंगाल और उड़ीसा में इस प्रकार की कुछ पुस्तकें और लोकगीत उपलब्ध हुए जिनसे उस अंत तिमिरावृत युग की धार्मिक साधना पर प्रकाश पड़ता है। श्री दिनेश चंद्र सेन महाशय की धारणा है कि 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक बंगाल और उड़ीसा में एक अत्यंत शोचनीय नैतिक दुर्गति का आविर्भाव हुआ था। उस युग के ताम्र शासनों पर हर पार्वती की वंदना में उनका हाव भाव तथा परस्पर आलिंगन का आदि का रुचि गर्हित वर्णन पाया जाता है। एक डीसी सेन बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर 401। दो कर्ण मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म 224। तीन डीसी सेन बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेज संख्या 403। पृष्ठ संख्या 53। पूरी और कोणार्क के मंदिरों पर अश्लील चित्र अंकित है। वंगीय साहित्य परिषद में उस युग की बनी हर पार्वती की एक विभत्स प्रस्तर मूर्ति रखी है। इन प्रमाणों के बल पर यह समझना कठिन नहीं है कि उस युग की रुचि किस ओर थी। वैष्णव भक्तों में जयदेव ने सर्वप्रथम पूरी के मंदिर में उस युग रुचि गर्हित विलास प्रथा को आधार मानकर प्रेम गान लिखे। ये गान विशुद्ध प्रेम के आवेश में ही लिखे गए थे, परंतु कवि अपने युग की सामाजिक रुचि से बंधा था। परंपरा से तो जयदेव पर किया भाव के साधक समझे जाते थे, परंतु गीत गोविंद में इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम आगे चलकर देखेंगे कि ब्रजभाषा के कवियों पर जयदेव का प्रभाव था। एक दूसरा और नया प्रमाण अविष्कृत हुआ है, जिससे वैष्णव कवियों की प्रेम साधना का रहस्य प्रकट होता है। रंगपुर, दिनाजपुर आदि उत्तर बंग के जिलों में जो हिमालय के तलहटी में बसे हुए हैं, 12वीं-13वीं शताब्दी के कुछ प्रचलित गीत पाए गए हैं। ये गान दो तरह के होते हैं, असल धमाली और शुक्ल धमाली। असल धमाली गान इतने अश्लील होते हैं कि वे गांव के बाहर ही गाए जाते हैं। इन्हें कृष्ण धमाली भी कह सकते हैं। यह कृष्ण धमाली गाने ही किसी समय बंग देश के जन साधारण की राधा कृष्ण की प्रेम कथा सुनने की तृषा मिटा देते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन राजवंशी जाति और योगी जाति के लोग आज तक बंगाल के नाना स्थानों में इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करते आए हैं। शुक्ल धमाली को संशोधन करने के लिए सुप्रसिद्ध कवि वैष्णव कवि चंडीदास ने कृष्ण कीर्तन नामक ग्रंथ लिखा था। यह संशोधित संस्करण भी कम अश्लील नहीं है। इसी से दिनेश बाबू अनुमान करना चाहते हैं कि वह कृष्ण धमाली कितनी गर्हित रही होगी। इस पुस्तक के अनुसंधान से हमें यह अनुमान करना सहज हो जाता है कि किस परिस्थिति में वैष्णव प्रेम को सिंगारिक रूप धारण करना पड़ा था। गोरखनाथ के प्रसंग में हम उस युग के पूर्वीय अंचल में उत्तर प्रदेश भारत के योग का उल्लेख कर चुके हैं। यह बात और भी मनोरंजक है कि इन पूर्वीय वैष्णवों के प्रेम गानों का प्रभाव ब्रजभाषा के शैशवकाल में ही पड़ा। केवल नाभादास या गुरु नानक ने जयदेव का नाम लिया हो सो बात नहीं, सूरदास के भजनों में जयदेव के पदों का अनुवाद भी है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि सूर्य सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास का सा प्रतीत होता है। पृष्ठ संख्या 54, अर्थात सूरदास के बहुत पहले ही ब्रैकेट में और इसलिए वल्लभाचार्य के भी बहुत पहले ब्रैकेट बंद, वैष्णव प्रेम धारा ने इस प्रदेश में अपनी जड़ जमा ली थी। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक जिस प्रकार का बौद्ध तंत्रवाद बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी प्रांतों में प्रबल रहा, वैसा इस प्रदेश में नहीं था। मध्य युग में बंगाल का प्रांत तंत्र का अखाड़ा समझा जाता था, परंतु वैष्णव प्रेमवाद में कुछ ऐसा रस था जो अवैष्णवों को भी आकृष्ट करता रहा। इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण है विद्यापति। आप स्वयं शैव थे, परंतु प्रेम साधन की ओर इतने आकृष्ट हुए कि शायद ही कोई वैष्णव कवि बंगाल में इतने दिनों तक इतना समादृत रहा हो। बंगाल के बाहर का प्रांत इस प्रेम से प्रभावित तो हुआ था, पर वह प्रभाव केवल आइडिया का प्रभाव था। वास्तव में बंगाल की भूमि में परकीय भाव को ऊंचा रूप देने का उपकरण पहले से ही वर्तमान था। ब्रजभाषा प्रांतों में यह बात नहीं थी, अर्थात राधा और कृष्ण संबंधी प्रेम के गान तो इस प्रदेश में चल पड़े, परंतु राधा कृष्ण की रानी ही समझी गई। सूरदास ने राधा और कृष्ण का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस आंदोलन को और जोर दे दिया। गगन गहराई जुरी घटाकारी, पौन झकझोर चपला चमकी चहु ओर, सुवन तन चितई नंद डरत भारी, कहयो वृष भानु की कुंवरी सो बोली कई, राधिका कान घर लिए जा रही, दो घर जाहू संग नफ भयो श्याम रंग, कुंवर कर गहयो वृष भानु बारी, गए वन और नवल नंद किशोर, नवल राधा नये कुंज भारी, अंग पुलकित भय मदन तिन तन जय, सूर्य प्रभु श्याम श्यामा बिहारी। सूर सागर 1302। एक, यह संदेह करने की बात नहीं है कि मध्य युग में यह बात फैल कर कैसे इतनी दूर तक आ सकी थी। जायसी के पद्मावत की रचना के 100 वर्ष के भीतर ही उसका बंगला में अनुवाद हो गया था। यह अनुवाद आराकान के एक मुसलमान बादशाह ने करवाया था। दादू के जीवन काल में ही उनका प्रभाव बंगाल में फैल गया था। श्री क्षिति मोहन सेन ने बंगाल के बावलों के गान सुनकर ही पहले पहल समझा कि दादू जन्म के मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। चैतन्य देव के अनंतर ही गौड़ीय वैष्णव धर्म राजस्थान तक फैल गया। मीराबाई के जीवन काल में ही उनके गान पूर्वीय प्रांतों में गाए जाने लगे थे। बंगाल के गोपी चंद का गान 100 वर्ष के भीतर ही भीतर सुदूर पंजाब तक गाया जाने लगा था और अब भी गाया जाता है। इन बातों के लिए श्री क्षिति मोहन सेन का मध्य युग में राजस्थान और बंगाल का आध्यात्मिक संबंध ब्रैकेट में गौ ही ओझा अभिनंदन ग्रंथ ब्रैकेट बंद देखिए। पृष्ठ संख्या 55। अब हम अलंकार संप्रदाय की बातों पर विचार करेंगे। बंगाल में चैतन्य युग के बाद ही वैष्णव अलंकारिकों का विकास हुआ है। हम अन्यत्र लिख चुके हैं कि इन अलंकारिकों का कोई भी प्रभाव हिंदी अलंकारिकों पर नहीं पड़ा। सच पूछा जाए तो रस ग्रंथों की रचना हिंदी में पहले ही होने लगी थी। ब्रजभाषा में गोपियों और कृष्ण की नाना लीलाओं का वर्णन पहले से ही होता आ रहा था। हिंदी रसाचार्यों ने उदाहरण के लिए इन लीलाओं को ठीक उसी तरह उद्धृत किया है जिस प्रकार मम्मट आदि ने कालिदास के शिव पार्वती परिणय संबंधी श्लोकों को उद्धृत किया था। एक नवीनता यह आ गई कि मम्मट आदि अन्य कवियों की रचना उद्धृत करते थे, पर ये अपनी ही रचना उद्धृत करने लगे। विश्वनाथ कुछ दूर तक इस प्रथा के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। बाद में वर्गीकरण करके कविता करना एक सरल उपाय समझा गया और हिंदी में रस ग्रंथों की बाढ़ आ गई। हमारा ख्याल है कि पंडित राज जगन्नाथ इस बात में ब्रजभाषा वालों से प्रभावित हुए थे। ऊपर हमने जो कुछ कहा है उसका सारांश यह है कि वैष्णव धर्म शास्त्रीय धर्म की अपेक्षा लोक धर्म अधिक है। हिंदी साहित्य के लोक गीतों में इसका प्रवेश वल्लभाचार्य के बहुत पहले हो गया था। इन्हीं गीतों का विकसित और सुसंस्कृत रूप सूर सागर के अंतर्गत विद्यमान है। अन्य सभी अशास्त्रीय या लोक धर्मों बौद्ध जैन यहाँ तक कि उपनिषदों के धर्म की भांति इसकी जन्मभूमि भी बिहार बंगाल और उड़ीसा के प्रांत है। वल्लभाचार्य या चैतन्य देव प्रभृति कि इस लोक धर्म को शास्त्र सम्मत रूप दिया। ज्यों ही उसने एक बार शास्त्र का सहारा पाया त्यों ही विद्युत की भांति इस छोर से उस छोर तक फैल गया, क्योंकि असल में उसके लिए क्षेत्र बहुत पहले से ही तैयार था। जब शास्त्र सम्मत होकर इसने अपना पूरा प्रभाव विस्तार किया तो अलंकारिकों और रसाचार्यों ने भी उसको अपने शास्त्र का आलंबन बनाया। असल में यह कहीं बाहर से आई हुई चीज नहीं है। भारतीय साधना की जीवन शक्ति के रूप में यह धारा नाना रूपों में प्रकट हुई थी। मध्य युग के वैष्णव धर्म ने इसे जो रूप दिया वह महायान भक्ति का विकसित और मार्जित रूप था। इस भक्ति साहित्य ने संसार के साहित्य में एक नई वस्तु दान की और वह यह है कि आध्यात्मिक तथा कला संबंधी सभी साधनाओं का लक्ष्य विचित्र रूप से एक है। जो ज्ञान का विषय है वही भक्ति का और वही रस का।